चौथा चैप्टर इतिहास का क्षेत्र स्कोप ऑफ हिस्ट्री। इतिहास का क्षेत्र क्या है, यह भी इतिहास की परिभाषा की तरह जटिल है। इतिहासकारों का यह मानना है कि इतिहास का क्षेत्र सदैव समान सीमाओं में नहीं रहता, वह परिवर्तनशील है। उसका क्षेत्र यूं तो अतीत काल के यथार्थ अंकन को ही मानना चाहिए, क्योंकि यही इतिहास के क्षेत्र का मूल आधार है। परंतु किस तरह से इतिहास दर्शन की व्याख्या होनी आरंभ हुई, उससे इतिहासकारों के दृष्टिकोण भेद प्रकट हुए, जिनका प्रभाव इतिहास क्षेत्र की सीमाओं पर भी पड़ा। आधुनिक भक्ति ज्ञान के विस्फोट का काल है। समाज जीवन की संरचना एवं संबंध जटिलतर हो रहे हैं। प्रारंभिक ऐतिहासिक चिंतन से वर्तमान का चिंतन विशिष्ट एवं बहुविध है। रेनियर ने कहा है कि प्रत्येक युग का समाज अपने समकालीन इतिहासकारों से प्रश्न करता है, और इतिहासकार नित्य नूतन साक्ष्यों से उत्तर प्राप्त कर समाज के सम्मुख प्रस्तुत करता है। हेरोडोटस से टाइनबी तक परिवर्तित समाज के रूपात्मक क्षेत्र की विविधताएं बढ़ी है। अतः वर्तमान के संदर्भ में अतीत के भौगोलिक, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक आदि अनेक दशाओं का उत्तर दे पाना इतिहासकार के लिए एक कठिन कर्म है। इतिहास क्षेत्र का वर्गीकरण आधुनिक विज्ञान ने किया है। डेवी का कथन समचीनी है कि टू क्लासिफाई इज एज यूजफुल एज नेचुरल, द पर्पस इज ए पिकलेटेड आवर डीलिंग विथ इनक्वाई एंड चेंजिंग इवेंट्स। अर्थात इतिहास का वर्गीकरण उपयोगी तथा स्वाभाविक है। इसका अभिप्राय विशेष तथा परिवर्तित घटनाओं का ज्ञान प्राप्त करना है। श्री एफ सी सिक्तर ने भी ऐतिहासिक क्षेत्र के वर्गीकरण के संबंध में कहा है कि एक्स ह्यूबिटी डिविजन्स आर हार्डली और बी ओवरटेंटेबल। अर्थात विस्तृत वर्गीकरण संभवतः दुर्लभ है, परंतु इतिहासकारों ने अतीत की स्थितियों एवं परिस्थितियों का उत्तर देने के लिए ऐतिहासिक क्षेत्र का वर्गीकरण निम्नवत किया है। राजनीतिक इतिहास। स्वाभाविक रूप से इतिहास राजनीतिक से जुड़ा हुआ है। राजनीतिक सामाजिक अपेक्षाओं की कर्णधार है इतिहासकार। इसी कारण अब जनता की राजनीति तथा इतिहास से जो अपेक्षाएं हैं उनकी विवेचना ऐतिहासिक संदर्भ में करता है, और उसे जो कुछ राजनीति या और शासन से चाहिए उसकी व्याख्या इतिहास के मूल्यों से करता है। राज संस्था अपने विभिन्न रूपों में प्राचीन काल से ही इतिहासकारों के लिए रुचिकर रही है, इसीलिए श्री राउज ने इसे इतिहास का मेरुदंड स्वीकारा है। प्रत्येक युग का जननायक तत्कालीन घटनाओं को संनियंत्रित कर राज्य संस्था के माध्यम से अपनी महती अभिलाषाओं को व्यक्त करता है। रेनियर का कथन है कि युगीन जननायकों ने अपने कार्यों से समाज के भाग का निर्णय किया है। आधुनिक काल में राजनीतिक इतिहास लेखन को वरीयता प्रदान करने के दो कारणों को प्रोफेसर वर्नास मानते हैं। का हीगल का राज विषयक सिद्धांत, ख राष्ट्रीयता की भावना। थियूस डी डीज गिवन तथा मैकाले की महत्वपूर्ण रचनाओं का आधार राजनीतिक इतिहास ही था। एक्टन का कथन है कि पॉलिटिक्स इज द ग्रेन गोल्ड डिपॉजिट बाय द स्ट्रीम ऑफ हिस्ट्री इन द स्टैंड ऑफ टाइम। राउज के अनुसार इतिहास में राजनीतिक का इतिहास सबसे मनोरंजक विषय है। किसी समाज अथवा देश के इतिहास में राजनीतिक इतिहास से ही हम उस समाज की सभ्यता का अनुमान लगाते हैं, क्योंकि राजनीतिक मंच पर ही महान पुरुषों के कार्यों का उल्लेख होता है। सीले महोदय का कथन है कि पॉलिटिक्स आर व्यूगलर व्हेन दे आर नॉट लिबरलाइज्ड बाय हिस्ट्री एंड हिस्ट्री फिट्स इनटू मोर लिटरेचर विद व्हेन इट लूजेज साइट ऑफ इट्स रिलेशंस और टू पार्टिकल पॉलिटिक्स अर्थात राजनीतिक प्रपंच है यदि इतिहास द्वारा वह उदारतीकृत नहीं है और इतिहास साहित्य में समाप्त हो जाता है यदि वह व्यवहारिक राजनीति से संबद्ध नहीं होता है। परंतु इतिहास में प्राचीन राजनीतिक विवरणों की व्यक्तिगत भूमिका का युग समाप्त हो रहा है और अब राजनीतिक इतिहास में जन सामान्य की भूमिका के अध्ययन का समय समुपस्थित हो गया है। आधुनिक युग में इसको सूक्ष्म इतिहास अर्थात माइक्रो हिस्ट्री की संज्ञा दी गई है। यह इतिहास की बदलती अवधारणाओं के कारण है। दूसरा, सामाजिक इतिहास। ट्रेवेलियन प्रथम व्यक्ति था जिसने सामाजिक इतिहास के महत्व को समझा और कहा कि विदाउट सोशल हिस्ट्री इकोनॉमिक्स हिस्ट्री इज वारेन द पॉलिटिकल हिस्ट्री इज अनइंटेलिजिबल अर्थात सामाजिक इतिहास के अभाव में आर्थिक इतिहास बंजर तथा राजनीतिक इतिहास अवर्णनीय है। कांटे का कथन है कि हिस्ट्री इज सोशल फिजिक्स अर्थात इतिहास सामाजिक भौतिक शास्त्र है जिसके अंतर्गत मानवीय व्यवहारों के सामान्य नियमों का अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार टाइनवी ने लिखा है कि हिस्ट्री इज मेड ऑफ द एटम्स ऑफ सोसाइटीज। जनरल विद्वान रिचल तथा फ्रेटैंग ने प्रथमतः मध्यकालीन एवं आधुनिक जर्मनी के सामाजिक जीवन का ऐतिहासिक पुनर्निर्माण किया। तत्पश्चात लूडविंग तथा पॉल लेक्राकस ने सामाजिक इतिहास पर कार्य किया। इंग्लैंड में ट्रेल तथा मन ने सोशल इंग्लैंड, ट्रेवलियन ने सोशल हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड तथा मेकाले और जॉन रिचर्ड ग्रीन आदि ने इंग्लैंड के सामाजिक इतिहास पर कार्य किया। उसी प्रकार फ्रांस में रानवैंड ने फ्रांस की सभ्यता का सर्वेक्षण किया। अमेरिका में मैक मास्टर ने भी सामाजिक इतिहास पर कार्य किया। भारत के पी जायसवाल, डॉक्टर पांडुरंग वामन काने धर्मशास्त्र का इतिहास और डॉक्टर जयशंकर मिश्र का प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास लिखा गया। तीसरा, आर्थिक इतिहास। इतिहास के क्षेत्र में आर्थिक इतिहास को 19वीं शताब्दी में स्वीकार किया गया। एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशन लिखकर इस दिशा में प्रवर्तन किया। आर्थिक इतिहास के महत्व को प्रस्तुत करने में कुंदरसे, कामते, वर्कले तथा कार्ल मार्क्स का सर्वाधिक योगदान रहा है। मानव समाज को सर्वाधिक आर्थिक तत्व प्रभावित करता है, अतः आर्थिक इतिहास लेखन की ओर विद्वानों का ध्यान आकर्षित हुआ और जिन विद्वानों ने इस क्षेत्र में कार्य किया उनमें रोजर्स, गिवन, एसले, कनिंघम, लिप्सन आदि प्रमुख हैं। परंतु आर्थिक इतिहास पर महत्वपूर्ण कार्य जॉर्ज रेनार्ड तथा उनके सहयोगियों का है जिन्होंने यूनिवर्सल हिस्ट्री ऑफ लेबर तथा हेली डेविड और उनके सहयोगियों द्वारा लिखित इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ अनिटेड स्टेट्स का है। जर्मन विद्वान में स्मॉलर, सोमपर्ट, बेवेलेन तथा मिलर आदि प्रमुख हैं जिन्होंने आर्थिक इतिहास पर यह महत्वपूर्ण काम कार्य किया। प्रोफेसर राउज का कथन है कि आर्थिक इतिहास केवल यह बताता है कि समाज आजीविका के साधनों का उत्पादन किस प्रकार से करता है और सामाजिक इतिहास यह बताता है कि समाज उन वस्तुओं का उपयोग किस प्रकार करता है। जी एन क्लार्क ने कहा है कि आर्थिक इतिहास के अंतर्गत हम उपकरणों का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ टूल्स, यंत्रों, मैकेनिक्स, रसायनों, केमिकल्स तथा उत्पादन के अन्य विधियों, अदर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का अध्ययन करते हैं। सर विलियम्स एसले के अनुसार द हिस्ट्री ऑफ एक्चुअल ह्यूमन पार्टिक प्रैक्टिक विथ रिस्पेक्ट ऑफ द मटेरियल बेसिक्स ऑफ लाइफ अर्थात आर्थिक विचार स्वयं में ऐतिहासिक तथ्यों से संबद्ध होते हैं। श्री एन एस वी ग्रास ने लिखा है कि इकोनॉमिक हिस्ट्री इज द हिस्ट्री ऑफ वेरियस वे ways in which man has obtained a living। अर्थात आर्थिक इतिहास का अभिप्राय मानवीय आजीविकों के साधनों से है। उत्पादन के विविध उपकरणों, विधियों, पदार्थों, मानवीय प्रयासों एवं संतोषप्रद उत्पादन के साधनों का प्रयोग ही आर्थिक इतिहास है। इसी के अंतर्गत बैंकों का इतिहास भी अंतर्भूत है। प्राचीन भारतीय आर्थिक इतिहास पर सर्वप्रथम वर्ल्डवुड, रीज डेविडेस, बी ए स्मिथ, जॉर्न वाट, एन एस सुब्बा राव, पी नियोगी, जी जे सी रे, आर सी मजुमदार, जे एन समद्दर, आर कीथ, एम ए वच, एस के आयंगकर, डॉक्टर अल्टेकर, के टी शाह, बी पी मजुमदार आदि अनेक विद्वानों ने अपने ग्रंथ एवं लेख लिखे। मार्क्सवादी इतिहासकारों में हीरेन मुखर्जी, रजनी पामदत्त, कौसाम्बी, डॉक्टर आर एस शर्मा आदि विद्वानों ने कार्ल मार्क्स के आर्थिक नीतिवाद के सिद्धांतों पर भारत का आर्थिक इतिहास प्रस्तुत किया है। परंतु आधुनिक आर्थिक सिद्धांत का आधार गणित तथा सांख्यिकी है। इसका प्रयोग आर्थिक इतिहास में कभी संभव नहीं है, क्योंकि प्राचीन तथ्यों के आधार पर प्राचीन आर्थिक इतिहास की संरचना की जाती है। अतः आर्थिक इतिहास लेखन आर्थिक साक्ष्यों के आधार पर ही उपयोगी तथा बोधगम्य संभव है। चौथा, संवैधानिक इतिहास। सर जॉर्ज क्लार्क ने लिखा है कि इतिहास में संवैधानिक नियमों को महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए। यही इतिहास का मूल केंद्र बिंदु है। राजनैतिक इतिहास का विषय विषयनिष्ठ होता है और संवैधानिक इतिहास का विषय वस्तुनिष्ठ होता है। 20वीं सदी के कुछ इतिहासकारों ने संवैधानिक इतिहास तथा राजनैतिक इतिहास में अंतर को स्वीकार किया है। परंतु यह अंतर मात्र मौलिकता का है। हेलम, कार्निवाल, लेविस, अर्सकीन तथा मेटलैंड ने संवैधानिक इतिहास क्षेत्र को विकसित करने का कार्य किया है। पांचवा, विधि का इतिहास। इतिहास के वर्गीकरण में सूक्ष्म चिंतन के आधार पर विधि का इतिहास भी लिखा जा रहा है। विधि के विकास का अध्ययन राजनैतिक, संवैधानिक एवं सामाजिक प्रक्रिया में परिवर्तन के साथ ही उद्भूत स्वीकारा जाता है। इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करने वाले विद्वानों में ऑस्ट्रेलिया में गम्प्लोविज्ड, जर्मनी में ग्रीकी, शेरिंग, वर्नर, कोलहर आदि, इंग्लैंड में मेटीलैंड, ब्लैकस्टोन, पॉल्क्स, जीवस्कस, लास्की आदि, फ्रांस में डरगिट, एस्मीन, कारमांट आदि, संयुक्त राष्ट्र में होल्म्स, बिगमोर, पाउंड आदि तथा इटली में ब्रेको आदि विद्वानों के अतिरिक्त प्राचीन काल में मनुस्मृति, हम्मुराबी का कोड, जस्टिनियन कोड तथा कोड ऑफ नेपोलियन और मेकाले का इंडियन पेनल कोड आज भी प्रभावी है। डॉक्टर काने, धर्मशास्त्र का इतिहास। डॉक्टर काने इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण कृति है। छठा, राजनयिक इतिहास अर्थात कूटनीतिक इतिहास। राजनैतिक इतिहास के एक शाखा के रूप में राजनयिक इतिहास को स्वीकारा जाता रहा है। परंतु 19वीं सदी से इतिहासकारों ने राजनयिक इतिहास लेखन की आवश्यकता का अनुभव किया। इसके अंतर्गत विदेश नीति, राष्ट्रों के परस्पर संबंध, राष्ट्र के मध्य आदान प्रदान की गई संधियों, बहुमूल्य पत्रों का अध्ययन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं से संबद्ध विभिन्न राष्ट्रों की नीतियों, सिद्धांतों एवं व्यवहारों तथा अंतर्राष्ट्रीय नियमों की विकासात्मक विवरण इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। आधुनिक काल में शीत युद्ध, क्षेत्रीय संगठनों, संयुक्त राष्ट्र संघ आदि विषयों के अध्ययन से राजनयिक इतिहास का क्षेत्र विस्तृत होता जा रहा है। कौटिल्य अर्थशास्त्र एवं शुक्र नीतिसार आदि प्राचीन ग्रंथों में राजनयिक परंपरा का विवरण दिया गया है। सातवां, सैनिक इतिहास। राजनीतिक इतिहास के साथ साथ कूटनीतिक इतिहास, संवैधानिक इतिहास तथा विधि इतिहास का विकास हुआ, परंतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण सैनिक इतिहास माना जाता है, क्योंकि राज्यों के उत्थान पतन के कारण सैनिक कारण रहे हैं। नेपोलियन, मुसोलिनी तथा हिटलर जैसे सेनानायकों का उत्थान पतन, सैनिक गतिविधियों एवं समस्याओं के निर्माण एवं प्रयोग की विधियां भी उत्तरदायी रही हैं। सैनिक गतिविधियों ने मानव समाज को सर्वाधिक प्रभावित किया है और अद्यावधि आतंकित कर रहा है। सर्वप्रथम थ्यूसिडाइडिस ने द हिस्ट्री ऑफ द पीलोपोलिसियन वार लिखा। तत्पश्चात क्लारेंडॉन ने द ग्रेट रिविलेयन नामक ग्रंथ लिखा। इसके पश्चात प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध पर महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी गई। आधुनिक काल में युद्ध का क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय इतिहास लिखा जा रहा है। सैनिक इतिहास के लेखन में मात्र सेना नायकों का ही नहीं अपितु सैनिक शस्त्रास्त्रों के विकास और प्रयोग का भी विकासात्मक इतिहास लिखा जा रहा है। आजकल सैनिक इतिहास का क्षेत्र निरंतर विस्तृत होता जा रहा है। आठवां, सांस्कृतिक इतिहास। ऐतिहासिक अध्ययन की आधुनिक प्रवृत्ति सांस्कृतिक इतिहास की ओर अधिक उन्मुख होती जा रही है, जिसमें किसी स्थान और काल में घटित समग्र राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक दशाएं पृथक पृथक न होकर संपूर्ण रूप से परिवर्तन की उत्तरदायी होती हैं। परंतु सांस्कृतिक इतिहास को वैशिष्ट्य प्रदान करने के लिए रीति रिवाज, संस्कार, शिक्षा, साहित्य, भाषा, लिपि, कला, संगीत तथा आमोद प्रमोद के साधनों के विकास का अध्ययन किया जाता है। इसी के महत्व को देखकर पाश्चात्य विद्वानों ने ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री की रचना की और प्रत्येक युग के सांस्कृतिक इतिहास का पूर्ण वर्णन किया। उन्होंने शेक्सपियर कालीन जॉनसन तथा विक्टोरिया कालीन इंग्लैंड का इतिहास लिखा। इसी प्रकार भारत में वैदिक कालीन, मौर्य कालीन, गुप्त कालीन, हर्ष कालीन, राजपूत एवं मुगल कालीन सांस्कृतिक विकास का अध्ययन इतिहासकारों ने किया है। नौवां, धार्मिक इतिहास। विश्व इतिहास का यह रोचक विषय रहा है। अधिकांश इतिहासकारों ने धार्मिक भावनाओं से प्रेरित होकर इसे इतिहास का एक अंग स्वीकार किया। गिवन, ह्यूम, मैकाले, एटन, मैकलैंड आदि ने धर्म को अपना प्रमुख अध्ययन क्षेत्र मानकर इतिहास की रचना की। यूरोपीय विद्वानों द्वारा भारत के वैदिक अर्थात ब्राह्मण धर्म पर सर्वाधिक पुस्तकें लिखी गईं। इसी प्रकार बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म तथा इस्लाम धर्म का इतिहास विभिन्न युगों में लिखा गया। यूरोप में पुनर्जागरण तथा धर्म सुधार का कार्य धार्मिक इतिहास लेखन की दृष्टि से स्वर्णकाल माना जाता है। धार्मिक विषयों का विवरण प्रोटेस्टेंट तथा कैथोलिक इतिहासकारों ने दिया है। भारत में वैष्णव, शैव, शाक्त धर्म पर तथा अन्य संप्रदायों का इतिहास लिखा गया है। दसवां, औपनिवेशिक इतिहास। यह 19वीं सदी की देन है। औद्योगिक क्रांति के पश्चात यूरोप को शक्तिशाली राष्ट्रों ने एशिया, अफ्रीका, दक्षिणी तथा उत्तरी अमेरिका में उपनिवेश स्थापित किए। इन राष्ट्रों के मध्य उपनिवेश विस्तार के लिए प्रतिस्पर्धा होने लगी, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्थिति तनावपूर्ण हो गई। इतिहासकारों का ध्यान इन उपनिवेशवादियों की समस्याओं और संकटकालीन स्थिति की ओर गया, जिसके परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक इतिहास लेखन प्रारंभ हुआ। इस इतिहास ने इतिहास के वर्गीकरण क्षेत्र के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया। 11वां, कॉमनवेल्थ का इतिहास। ब्रिटिश राज के पतनोपरांत इंग्लैंड सरकार का प्रयास था कि इंग्लैंड तथा उसकी स्वतंत्र साम्राज्य संबंधी राष्ट्रों के मध्य किसी प्रकार का औपचारिक का किसी प्रकार का औपचारिक संबंध बना रहे, इसी उद्देश्य से कॉमनवेल्थ की स्थापना हुई और कॉमनवेल्थ इतिहास ब्रिटिश साम्राज्य की देन है। डॉक्टर जे ए विलियम्स ने ब्रिटिश साम्राज्य के विकास, समुद्री व्यापार तथा ट्यूड कार्निक नाविक आदि की रचनाएं की। सर किथ टैंकॉक ने सर्वे ऑफ ब्रिटिश कॉमनवेल्थ अफेयर्स नामक पुस्तक लिखी है। बौद्धिक इतिहास। प्रोफेसर वांस का कथन है कि मानव मस्तिष्क ने संपूर्ण मानवता के व्यवहार एवं व्यक्तित्व को सर्वाधिक प्रभावित किया है और मानवीय संस्कृति के एकात्मक विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, अतः मानव मस्तिष्क के विकास का अध्ययन आवश्यक है। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने बौद्धिक इतिहास की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि मानव मस्तिष्क की प्रगति उसके तर्क शक्ति के क्रमिक विकास, विज्ञान की उत्तरोत्तर वृद्धि तथा ज्ञान के विस्फोट ने मानवीय बुद्धि के विकास के इतिहास की रचना को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य किया। इसी प्रकार के इतिहास को बागे हार्ट टार्डे तथा दुर्खिम ने परिवर्तित किया, परंतु कार्ल लैम्प्रेट ने व्यवस्थित रूप से बौद्धिक विकास को प्रस्तुत किया। वैज्ञानिक विधि से लिखने वाला प्रोफेसर जेम हार्वे रॉबिन्स था। इसने एन आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री ऑफ द वेस्टर्न यूरोपियन माइंड, माइंड इन द मेकिंग, ह्यूमनिजिंग ऑफ द नॉलेज, द ह्यूमन कॉमेडी लिखकर बौद्धिक इतिहास को प्रसिद्धि दी। जे एच रेंडाल ने कंप्रीहेंसिव ट्रीटमेंट ऑफ मॉडर्न इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री तथा एच ई वार्न्स ने एन इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल हिस्ट्री ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड तीन खंडों में लिखा। इसके अतिरिक्त अन्य विद्वानों ने भी इस दिशा में कार्य किया। इतिहास का यह प्रकार अपने में एक नई दिशा है। 13 विश्व इतिहास। प्रोफेसर एल्टन का कथन है कि ऑल गुड हिस्टोरिकल राइटिंग इज यूनिवर्सल हिस्ट्री इन द सेंस दैट इट रिमेंबर द यूनिवर्सल विल डीलिंग विथ ए पार्ट ऑफ इट। प्रारंभ में किसी ने विश्व इतिहास लिखने का प्रयास ही नहीं किया, किंतु 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जब लोगों ने विश्व भ्रातृत्ववाद के सिद्धांत को स्वीकारा, तब इतिहासकारों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत की। इस दिशा में सर्वप्रथम एच जी वेल्स, सर वाल्टर रिलीग, फिस्क, सेलिज, हैज, बोट्सफोर्ड, केलर हिक आदि ने इस दिशा में पर्याप्त प्रयास किया, परंतु अधिक सफल न रहे। कालांतर में बिथलेम, क्विकेन, वाल्टर गोट्ज, ग्यूस्टेव ग्लोज, लुइस हेलम्फेन, हेनरी बेर आदि ने उपयोगी विश्व इतिहास का संपादन किया। इस दिशा में यूनेस्को द्वारा महत्वाकांक्षी प्रकल्प अर्थात प्रोजेक्ट लिया गया है, जिसमें 37 विशेषज्ञों द्वारा मानव संस्कृति का जागतिक इतिहास लेखन कार्य किया जा रहा है। परंतु इस प्रकल्प की आलोचना करते हुए डीएच फिशर का कथन है, द प्रोजेक्ट इज ए कैटास्ट्रोफे ऑन एन अप्रोप्रियलिटी मोनुमेंटल स्केल एंड द होलीएस्ट फैलेसी। इस दिशा में दूसरा प्रयास बिल ड्यूरंट का स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन है। 14 कला का इतिहास। इतिहास के क्षेत्रांतर्गत कला का इतिहास वर्तमान इतिहास की विशिष्ट विधा है। यह विधा आधुनिक इतिहास के दर्शन का एक महत्वपूर्ण अंग है। सर पिलंदर्स द्वारा रेवोल्यूशंस ऑफ सिविलाइजेशन के यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि संस्कृति के प्रारंभिक काल में वास्तुकला और मूर्तिकला का विकास होता है, तत्पश्चात चित्रकला का, फिर साहित्य एवं संगीत का, फिर यंत्र शास्त्र और सैद्धांतिक विज्ञान का और अंत में धन की उन्नति होती है। उनके मतानुसार 1240 ईस्वी के लगभग यूरोपीय वास्तुकला और मूर्तिकला का विकास हुआ, 1400 ईस्वी के लगभग चित्रकला का, 1600 ईस्वी के लगभग साहित्य का, 1790 ईस्वी के लगभग संगीत का, 1890 ईस्वी के लगभग यंत्र शास्त्र का और 1910 के लगभग विज्ञान का और उसके बाद धन का। इसी प्रकार पाल लिंगेती ने भी वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकला का क्रम प्रस्तुत करते हुए कहा कि विकास और मूर्तिकला एवं पतन और चित्रकला समानांतर हैं। पाश्चात्य संस्कृति के इतिहास में इस क्रम के 7 वृत्त दृष्टिगोचर होते हैं। इनके अनुसार संस्कृतियों का वर्गीकरण प्रमुख है, प्रमुख कला शैलियों के अनुरूप किया जा सकता है। मिस्री संस्कृति वास्तुकला प्रधान है, यूनानी रोमन मूर्ति प्रधान अर्थात प्लास्टिक है और वर्तमान यूरोपीय संस्कृति राग रंग प्रधान है। बिदला प्राद ईसाइयत से पूर्व का प्रकृति चिंतन तथा वर्तमान कालीन प्रकृति चिंतन ने यह सिद्ध किया कि पूर्वी संस्कृतियां अर्थात भारत, चीन, मिस्र, ईरान मुख्यतः वास्तु प्रधान है। यूनानी रोमन संस्कृतियां मूर्ति प्रधान है। मध्यकालीन ईसाइयत राग रंग प्रधान है और वर्तमान संस्कृति संगीत प्रधान है। वास्तुकला का भगवान का प्रतीक है, मूर्ति और चित्रकला आदर्श या यथार्थ मनुष्य का प्रतीक है और संगीत कला बाह्य गोचर का प्रतीक है। कला के आधार पर संस्कृतियों का यह विभाजन विवादास्पद हो सकता है, परंतु इस प्रकार के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि कला का इतिहास अपना पृथक दृष्टिगोचर प्रस्तुत कर रहा है। हेगेल ने अपनी स्थितिक में कला के विकास को आत्मा के अभिव्यक्ति की प्रक्रिया बताया है। उनके मतानुसार कला के 3 स्तर हैं, प्रतीकवादी, सिंबॉलिक, रीतिवादी, क्लासिकल और रोमांटिक। उसके मतानुसार पूर्व की कला मुख्यतः प्रतीकवादी है, जो यूनानी रोमन जगत की कला तो यूनानी रोमन जगत की कला रीतिवादी। श्री वाल्देमार दियोनो ने अपनी विशाल ग्रंथ पुरातत्व शास्त्र, उसके मूल और तरीके में मूर्ति कला और चित्रकला के पुरापाषाण युगीन, नवपाषाण युगीन, यूनानी रोमन युगीन और ईसाई युगीन, इनको 4 भागों में विभाजित किया। प्रत्येक युग की कला प्रारंभिक आर्केक रीति प्रधान, क्लासिक और पतोन्मुख डिकेडेंट, इन 3 अवस्थाओं से गुजरती है। अतः एक युग की अवस्था कला के दूसरे युग को उसी अवस्था की कला में मिलती जुलती है। मैक्स फेर्नबोर्न का मत है कि प्रत्येक देश और जाति की कला भौतिक फिजियोप्लास्टिक अवस्था से भाव प्रधान आइडियोप्लास्टिक अवस्था तक पहुंचती है। सेफर, रीगल और समारसोव का विचार है कि प्रत्येक देश और जाति की कला अभिव्यंजनात्मक इम्प्रेशनिस्टिक अवस्था तक पहुंचती है, परंतु सोरोकिन की धारणा है कि प्रत्येक देश और जाति की कला भावना प्रधान है, समन्वय प्रधान और गोचरता प्रधान युगों से गुजरती है। कला द्वारा संस्कृति की विभिन्न श्रेणियों की व्याख्या ने प्रत्येक देश की कला के विविध प्रकारों का इतिहास लिखने हेतु लेखक को बाध्य किया। कला का इतिहास वस्तुतः वस्तुनिष्ठ होता है। कला के इतिहास द्वारा तत्कालीन संस्कृतियों की भौतिक व्याख्या की जा रही है, क्योंकि कला का संबंध वस्तु जगत से अधिक है। पुरातत्व विज्ञान ने अनेक संस्कृतियों का उद्घाटन कर तत्कालीन संस्कृति की वास्तुकला, मूर्तिकला का यथार्थ चित्रण किया है। इस दिशा में कुमार स्वामी, डॉक्टर अग्रवाल, डॉक्टर शिवराम मूर्ति आदि ने भारतीय संस्कृति का यथार्थ चित्रण कला के इतिहास द्वारा प्रस्तुत किया है। कुछ विद्वानों की धारणा है कि इतिहास एक ऐसा विषय है जिसका क्षेत्र बहुत व्यापक है, इतना व्यापक कि यह सभी विषयों का मुख्य स्रोत है। यह सब मत विभिन्न अवधारणाओं के संगत है। वर्तमान समय में स्थिति यह हो गई है कि इतिहास केवल घटनाओं के सामाजिक सांस्कृतिक अध्ययन का ही विषय नहीं रह गया है, अपितु वह एक ऐसा सामाजिक विषय बन गया है जिसमें दर्शन को भी ढूंढा जाने लगा है। इसीलिए यह कहा जाने लगा है कि इतिहास क्षेत्र के अंतर्गत मनुष्य के साधारण कार्यों से लेकर उसकी विविध उपलब्धियों तक का वर्णन होता है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह माना जा सकता है कि समय के अनुसार इतिहास की विषय वस्तु बदलती रही, अतः उसका क्षेत्र भी अपने आयाम बदलता रहता है। यदि हम विषय वस्तु के स्थान पर विषय वस्तु के संदर्भ में इतिहास की व्याख्या चिंतन में परिवर्तन हुआ माने तो अधिक उपयुक्त होगा। इस प्रकार कहा जा सकता है कि इतिहास का क्षेत्र परिवर्तनशील है, अतः उसके आयाम भी परिवर्तनशील हैं। समाप्त।